दिन भर 12 सितंबर बृहस्पतिवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने से पाकिस्तान ने किया इनकार, भारत की प्रतिक्रिया।
हम फिर भी लगातार कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फुल इम्प्लीमेंटेशन हो।
भारत प्रशासित कश्मीर में पैलेट गन से टूट रहे हैं आम लोगों के सपने।
दोनों हस्बैंड और वाइफ कमाते थे, बोल रहे थे कि अपने लिए कोई घर बनाएंगे, लेकिन वो भी खत्म हो गया। मुझे इस आंख से कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
पंजाब में कर्ज में डूबे किसान परिवार में चार पीढ़ियों में पांच लोगों ने की आत्महत्या।
साडा चाचा ही सी जोगिंदर सिंह जिहड़ा परदादा सी ना, उदो बाद ओदे दो बेटे मुरे खुदकुशी करके नारा ते इक नाम भगवान सिंह सी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। पाकिस्तान ने अपने यहां जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फिर से कॉन्सुलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। कुलभूषण को पाकिस्तान ने इसी महीने की 2 तारीख को पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया था। इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला पूरी तरह से लागू हो। जम्मू के कठुआ में पुलिस ने 3 संदिग्ध चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इन तीनों का संबंध चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। कठुआ के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने बताया कि इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं।
आज सुबह 8 बजे के करीब हमने जैश ए मोहम्मद के 3 जो मेंबर्स हैं को अरेस्ट किया हुआ है। लखनपुर में नाके के दौरान एक ट्रक जिसका नंबर JK13-2000 है, उस ट्रक की तलाशी के दौरान हमें ये 3 लोग उस ट्रक में इलीगल पोजीशन में 6 ऑटोमेटिक वेपन्स लिए हुए पकड़े गए हैं। मुझे लगता है ये जो 6 वेपन्स हैं, इन 6 वेपन्स को रिकवर करना और जैश ए मोहम्मद की ये एक साजिश को नाकामयाब करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ये थे कठुआ के SSP श्रीधर पाटिल। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक आधिकारिक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले महीने की 5 तारीख से लेकर अब तक लगभग 4,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत ने 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। समाचार एजेंसी के अनुसार अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी पत्थरबाजी और अन्य उपद्रवियों के तौर पर की गई है। अभी तक लगभग 2,600 लोगों को रिहा किया जा चुका है, मगर सरकार की ओर से गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या नहीं बताई गई है। रूस में पुलिस ने विपक्षी नेता अलेक्सेई नवालिनी के समर्थकों के घरों और दफ्तरों पर सुबह सुबह छापेमारी की। पुलिस ने 30 शहरों में दर्जनों जगह कार्रवाई करते हुए कंप्यूटरों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस का कहना है कि नवालिनी के भ्रष्टाचार रोधी संगठन की ओर से कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में ये कदम उठाया गया है। नवालिनी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी पार्टी का खराब प्रदर्शन होने के बदले में ये कार्रवाई की है।
В этот раз он очень сильно расстроился из-за умного голосования, ведь его любимое детище, его деточка.
समझदारी से मतदान होने के कारण वो इस बार वाकई नाराज हैं, क्योंकि उनकी पार्टी, मैं कहूंगा कि उनकी पसंदीदा संतान यूनाइटेड रशिया पार्टी को मॉस्को और अन्य क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि हम अपना काम नहीं रुकेंगे। हमें अंदाजा है कि आने वाला समय मुश्किल भरा होगा, लेकिन हमारे लिए पहले भी हालात आसान नहीं थे। हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर अपनी ताकत जुटाकर ठगों और चोरों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। ये थे रूस में प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सेई नवालिनी के शब्द। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने संसद को 5 हफ्तों के लिए निलंबित करने के संबंध में महारानी को झूठे कारण नहीं बताए थे। बुधवार को स्कॉटलैंड की एक अदालत ने बोरिस जॉनसन के फैसले को अवैध करार दिया था। ब्रिटानी प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या उन्होंने वाकई संसद को भंग करने के कारणों को लेकर झूठ कहा था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,
Absolutely not. And indeed, as I say, the High Court.
बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड का हाई कोर्ट पूरी तरह हमसे सहमत है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। हम चाहते हैं कि महारानी का भाषण हो, संसद शुरू हो। राष्ट्रीय स्तर पर और भी बहुत सारे काम हैं जो अभी हमें करने हैं। ये थे ब्रिटानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फेसबुक ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी की इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा को 24 घंटों के लिए रोक दिया है। फेसबुक ने यह कदम हेट स्पीच यानी भड़काऊ सामग्री पर अपनी नीति के उल्लंघन पर उठाया है। नेतन्याहू के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज पोस्ट हुआ था कि अरब सभी इसराइलियों को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। लिकुड ने इस पोस्ट के लिए अपने ऑफिस के एक कर्मचारी को जिम्मेदार बताया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान ने ट्रेड यूनियन से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने या इनमें शामिल रहने के आरोप में 7 लोगों को जेल की लंबी सजा सुनाई है। इनमें से 3 मजदूर अधिकारों के लिए काम कर रहे थे, जबकि 4 अन्य मजदूरों से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करते थे। इन्हें 18 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जिम्बाब्वे में इस बात को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को कहां दफनाया जाए। मुगाबे का पिछले हफ्ते 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। मुगाबे के परिजनों ने इस बात को लेकर हैरानी जताई है कि सरकार उन पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि मुगाबे का अंतिम संस्कार राजधानी हरारे में राष्ट्रनायकों के लिए बनाए गए स्मारक में हो। मुगाबे के परिजन चाहते हैं कि उन्हें उनके गांव में दफनाया जाए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव शाम 7:30 से 8:30 बजे तक पूरे 1 घंटे का प्रसारण। आज संदीप सोनी के साथ। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसुलर एक्सेस देने से पाकिस्तान ने मना कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसुलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल कह रहे थे कि जहां तक आपका तीसरा सवाल है, दूसरी मीटिंग की कोई योजना नहीं है। मैं कमांडर जाधव और भारतीय कौंसुलर अफसर के बीच मीटिंग के बारे में और कोई तफसील नहीं दे सकता। इसके जवाब में भारत ने कहा है कि जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला पूरी तरह से लागू कराने की कोशिश जारी रहेगी।
कुलभूषण जाधव के सवाल पे आप लोगों को पता होगा कि 2 सितंबर को हमारे शाहजरे अफेयर्स को कौंसुलर एक्सेस मिला था और वो जो कौंसुलर एक्सेस मिला था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डायरेक्शन पर मिला था। ये भी आप लोगों को पता है कि जो आईसीजे की जजमेंट हुई थी वो हमारे हक में थी, हमारे फेवर में थी। हमने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि हम इसकी पूरी तरह से, और हम ये कोशिश भी करते रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। हमने आप जो बता रहे हैं उनका बयान सुना है। हम फिर भी लगातार कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन हो।
ये थे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। पाकिस्तान का दावा रहा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस हैं। जासूसी के लिए पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन यानी छर्रे वाली बंदूक का इस्तेमाल करते रहे हैं। कहा जाता है कि पैलेट गन मारती नहीं है लेकिन कई बार जिंदा लाश जरूर बना देती है। कश्मीर घाटी में बीते कुछ वर्षों में पैलेट गन की वजह से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। पिछले महीने 8 अगस्त को श्रीनगर की राफिया भी पैलेट गन का निशाना बनी। उनका कहना है कि भारतीय सेना ने इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भी भेजा। राफिया से बात की हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने।
8 अगस्त को हम दिन भर तो वैसे घर पे बैठे हुए थे, तो शाम को हम निकले हस्बैंड और मैं सब्जी लेने के लिए। तो हम गेट से बाहर ही निकले तो उतने में वहाँ से बहुत सारे लड़के भाग के आए हमारी तरफ। तो मेरे हस्बैंड मेरे थोड़ा सा आगे गया था, मैं उसके पीछे खड़ी थी। तो मेरा हस्बैंड भी उनके साथ दौड़ के वापस आ रहा था। तो मैंने जब आगे देखा तो वहाँ पे एक आर्मी वाला भी या पुलिस वाला था, वो मुझे नहीं पता है, तो वो भी दौड़ के आ रहा था। तो उसने वहाँ ऐसे गन खड़ा किया तो वैसे ही पता नहीं क्या मार था, मुझे वो नहीं पता है, गोली मारा था कि ये पैलेट मारा था। मैं ऐसे खड़े उसको देख रही थी तो उसने भी मुझे देखा, तो मैंने उसको हाथ से दिखाया कि आप मत मारो, लेकिन उसने फिर से भी मारा। और उतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे कवर किया था और मेरे हस्बैंड के पीठ के पीछे सब वो पैलेट लगे, उसमें से 5-6 मिस हो गए। वो मेरी लेफ्ट आईज में और नोज में और फेस में और सर में भी एक है और मेरे हाथ में भी एक है।
तो उसके बाद क्या किया आपने?
उसके बाद मेरा हस्बैंड दौड़ के मुझे कमरे में लाया और मेरी जेठानी भी आई, उसने भी देखा। मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मेरी आई में भी लगा है,
मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। उसने बोला नहीं नहीं नोज में है। मैंने बोला आप देखो फिर भी। उसने बोला हाँ आँख में है। फिर हमने मेरे हस्बैंड ने मेडिकल या क्या बोलते इसको प्राइवेट डॉक्टर के पास हम गए थे। वहाँ पे उसने बोला कि मेरे हस्बैंड को आप यहाँ पे पैसे बर्बाद मत करो, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ बाहर जाओ। तो हम दिन भर तो यहीं पे बैठे। तो एक आर्मी वाला आया, उसने हमारी हेल्प की, बोला कि कोई बात, उसने मेरी हालत देखी, उसके बाद बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको चेन्नई हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा। फिर वही हमें लेके गया चेन्नई हॉस्पिटल।
उन्होंने पूरा खर्चा उठाया उस ऑपरेशन का?
वो पूरा खर्चा नहीं उठाया, वहाँ की एयर टिकट और हॉस्पिटल का खर्चा उन लोगों ने उठाया मेरा। मेरे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम बहुत कुछ कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि आगे जाके बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। इन लोगों ने बहुत गलत किया। मैं अपने हाथों से कमाती थी, हम दोनों हस्बैंड और वाइफ कमाते थे, बोल रहे थे कि अपने लिए कोई घर बनाएंगे, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। मुझे इस आँख से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जो काम मैं खुद कर रही थी वो आज मेरे हस्बैंड को करना पड़ता है। मैं अपने बेटे को ट्यूशन के लिए लेके जाती, आज तो कुछ भी नहीं, खाली मेरा हस्बैंड घर पे बैठा हुआ है। सब कुछ ख़त्म हो गया।
अच्छा, जब आपको पैलेट लगा तो क्या उस दिन यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या हो रहा?
हाँ हो रहा था, दिन में हो रहा था वो, लेकिन रोड पे हो रहा था। उन लोगों को बताना हमारे घर पे आके हम लोगों में बैलेट फेंकना था, उन लोगों को सोचना था। वहाँ पे औरतें भी है, बच्चे भी है। वो तो मेरा बच्चा कहीं तरीके से बच गया, वरना मेरे बेटे को भी लगता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, उसको ये नहीं सोचना था कि हम कैसे फेंके कि छोटे छोटे बच्चे हैं। उस टाइम तो उस साइड से एक लड़का भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी फेंका। उसने मेरी तरफ देखा भी, वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, उसने फिर भी पैलेट फेंका। यहाँ तक मैंने उसको हाथ से भी दिखाया। मेरी जिंदगी तो पूरी खत्म ही हो गई।
तो आपने कल प्रोटेस्ट भी किया था प्रेस एनक्लेव में, उस प्रोटेस्ट का क्या मकसद था?
वो ये मकसद था, मैं ये बोल रही हूँ कि ये पैलेट गन जो चल रहा है वो सब कुछ बंद होना चाहिए। काफ़ी लोग लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं फिर भी तो ये शुक्रगुजार हूँ कि मैं मैरिड हूँ। आधे मैरिड के बगैर है, वो बेचारियाँ क्या करेगी। इससे दूसरों की ज़िंदगी तबाह हो गई, किसी की तो एक अंक, फिर भी मैं एक अंक से तो देख सकती हूँ, लेकिन कहियो कि बेचारों की दोनों आंखें ख़त्म हो गई। मेरे साथ भी हेडवना में बहुत सारे लड़के थे, उन बेचारों को तो दोनों आंखें ख़राब हो गई है, वो क्या करेंगे।
तो आपने कहा कि हम दोनों कमाते थे, तो आप खुद
हम दोनों में टेलरिंग करती हूँ, वो भी अब जी नहीं। मैं यहाँ जुखुरा जाती थी, वहाँ पे करती थी काम, वहाँ पे हाँ लड़कियों की, ये लड़कियों में हमने डाला है तो हम लड़कियाँ वहाँ पे काम करते हैं। अब तो वहाँ पे भी नहीं जा सकती।
पैलेट गन की पीड़ित राफिया से बात कर रहे थे माजिद जहांगीर। भारत प्रशासित कश्मीर के ताज़ा हालात क्या हैं? क्या विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद ज़मीन पर हालात कुछ बदले हैं? जानने के लिए बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से अब से कुछ देर पहले बात की।
जो प्रवक्ता थे उन्होंने जो अमन और कानून की जो सूरत हाल है कश्मीर की उसके हवाले से चंद बातें बताई। और जो पहली बात थी उन्होंने कहा कि जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है, और जो टेलीफोन लैंडलाइंस हैं उनको बहाल किया गया है पूरी तरह से, और सड़कों पर जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और उनका ये भी कहना था कि 5 अगस्त से लेकर अभी तक पूरी कश्मीर घाटी में जो है 187 यानी 187 लॉ एंड ऑर्डर किए के जो है मामलात सामने आ गए थे, और उसमें 165 जो घटनाएं थी वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अलोन रिकॉर्ड की गई। तो साथ ही उनका ये भी कहना था कि उनसे सवाल किए गए कि मोबाइल फ़ोन क्यों रेस्टोर नहीं किए जा रहे हैं, तो उन्होंने जो वही फिर पाकिस्तान का नाम लिया कि वहाँ से प्रोवोकेशन होता है, और उनको बार बार सवाल किए गए कि क्या फिर हमेशा आप इसको डील नहीं कर पाएंगे जो आप बार बार अपने जो पाकिस्तान की प्रोवोकेशन की बात करते हैं। तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि
प्रोवोकेशंस हैव नॉट स्टॉप्ड अस फ्रॉम ओपनिंग 96 एक्सचेंजेस इन द स्टेट। They have not stopped us from making landlines functional in the state. They have not stopped us from removing all restrictions to free movement. They will not stop us from taking all other actions, but we will do it at an appropriate time.
हमने जब landlines restore की तो पाकिस्तान हमें नहीं रोक, जो elements थे वो हमें रोक नहीं सके। landlines हमने बहाल की वो रोक नहीं सके, और दूसरे भी जितने हमने भी इकदाम उठाए उनसे वो हमें रोक नहीं पाए।
तो जब आप पूरे शहर में इधर से उधर घूम रहे थे, आपको खुद क्या महसूस हुआ?
बिल्कुल, देखिए जो पिछले 5 अगस्त से लेके आज तक जो मैंने महसूस किया कि आज सबसे ज्यादा प्राइवेट ट्रैफिक सड़कों पर दौड़ रहा था, चाहे लाल चौक हो, चाहे डलगेट हो, चाहे दूसरे इलाके हो। डाउनटाउन की तरफ हम नहीं गए, लेकिन जो दूसरे इलाके श्रीनगर के जहाँ जहाँ भी हम गए तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट था। दुकानें अलबत्ता बंद थी और कारोबारी इदारे सारे बंद थे।
भारत प्रशासित कश्मीर के ताजा हालात पर माजिद जहांगीर से बात कर रहे थे राजेश जोशी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी अब लोगों से सीधा संपर्क बनाने के इरादे से अपनी रणनीति बदलने की योजना बना रही है। कांग्रेस का आरएसएस की तर्ज पर आम लोगों के बीच जाने का इरादा है, ताकि वो आम लोगों को कांग्रेस की नीतियों और उसके इतिहास के बारे में बता सके। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
लगातार 2 लोकसभा और दर्जनों दूसरे चुनाव में पटखनी खा चुकी कांग्रेस पार्टी ने प्रेरकों का एक समूह तैयार करने का प्लान बनाया है। आरएसएस के स्वयंसेवकों की तर्ज पर बनाई जा रही प्रेरकों की टीम कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क अभियान और विस्तार योजना का हिस्सा है। खबरों के मुताबिक प्रेरकों की ऐसी टीम की बहाली का प्लान दिल्ली में 3 सितम्बर को हुई एक बैठक के बाद लिया गया। हालांकि ऐसी एक योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी में उस समय से ही चर्चा जारी थी जब असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जनसंपर्क के लिए आरएसएस मॉडल को अपनाने की बात कही थी। कद्दावर नेता ने कहा था कि आरएसएस ने जिस तरह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक नेटवर्क की मदद से अपना विस्तार किया है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। गोगोई ने कहा था कि इस तरह की किसी योजना को तैयार करने और अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली में सोनिया गांधी के जरिए बुलाई गई पार्टी की एक बैठक के बाद जब सीनियर नेता पीएन सिंह से इस बाबत पूछा गया तो वो बोले,
हमारे लोग जो इस देश में साइकिलों पे लेके जो इस देश में जिन्होंने लड़ाई की है स्वतंत्र बनाने के लिए, तब से कांग्रेस पार्टी के लोग गांव में जाकर लोगों को प्रेरणा देते आए, उसी चीज को हम लोगों ने फिर से जारी की है। हम कहीं और से हमें सीखने की जरूरत नहीं है।
आरएसएस से प्रेरणा लेने की बात को लेकर आरपीएन सिंह जाहिर है थोड़े असहज दिखे। हाल के सालों में कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीधे तौर पर आरएसएस को निशाने पर लेते रहे थे, बल्कि कुछ इस हद तक कि इस मामले में संघ उन्हें अदालत तक ले गया था। नई योजना के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है, ये आरपीएन सिंह की आगे की बातों से साफ हो जाता है।
नई चीजें जो आज एक बताया जाता है कि नया राष्ट्रवाद जो चल रहा है, नई दूरधर्मिष्ठता है, जो देश की मूल सिद्धांत है, वो जो आज से नहीं कई वर्षों से, कई सैकड़ों सालों से चली आ रही है, उस को हमको कायम रखना है।
हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कल्याणी शंकर प्रेरक वाली कांग्रेस की योजना को पार्टी के सपने से ज्यादा नहीं मानती।
इलेक्शन का पहले भी आनंद पटेल हमको बोल रहे थे कि राहुल गांधी कोशिश कर रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में लोगों को बिठा देंगे, वो 15-20 दिन रहेगा हर महीना काम करने के लिए, ये करेगा वो करेगा, सब कुछ बोल रहे थे। कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया इलेक्शन। तो इस वजह से ये बोलने का ऐसी पाइप ड्रीम जो बोलते हैं ना, वो पाइप ड्रीम है, इनके पास लोग नहीं।
जानकार इस योजना को बहुत व्यवहारिक भी नहीं मानते। पहली इस वजह से क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में जुड़ाव के बाद भी दोनों संगठन अलग अलग काम करते हैं और आरएसएस कार्यकर्ताओं का चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं होता। कांग्रेस की प्रेरक वाली योजना में इस तरह की कोई रोक नहीं दिखती। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
कुछ चीजें इस तरह की होती हैं मानो वो कड़ियों में जुड़ी होती हैं और जब एक कड़ी हिलती है या टूटती है तो पूरी चेन गड़बड़ा जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मामला भी कुछ इसी तरह का है। अर्थव्यवस्था की सुस्ती पंजाब में लुधियाना के कारखानों में भी जा पसरी है। लुधियाना से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट।
पंजाब के लुधियाना शहर में मशीन पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, घरेलू उपकरण, हौजरी और कपड़े, साइकिल आदि का निर्माण किया जाता है। पंजाब का सबसे ज्यादा उद्योग यहीं पर है, लेकिन चंडीगढ़ से लुधियाना तक लगभग 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद ये सवाल मन में आया कि इस शहर को भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जा सकता है। यहाँ के फोकल पॉइंट में पहुँचना ही बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में भरा हुआ पानी। ना केवल सड़कें खराब हैं बल्कि कई कारखाने बंद पड़े हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं, और इसका परिणाम है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हम मिले यहाँ की रहने वाली सुनीता रानी से, जिनके पास पिछले साल तक अच्छी नौकरी थी लेकिन फिर सब कुछ बदल गया।
मेरी एक साल पहले जॉब चली गई थी, तब से लेके अब तक मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ और जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं जॉब करती थी तो मेरी सैलरी 25,000 थी। जॉब छूटने के बाद पहले मैंने 3,000 पे काम किया, अब मैं 8,000 पे काम कर रही हूँ। जहाँ मेरी ग्रोथ होनी चाहिए थी वहाँ मेरा करियर ग्राफ नीचे जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझसे कहा गया था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर से जॉब पे रख लेंगे 2-3 महीने के बाद, लेकिन जब मैं फिर से वहाँ गई तो वही हाल था। अब कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है,
सारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है।
लुधियाना के ही उद्योगपति टीआर मिश्रा बताते हैं कि उन्होंने पिछले लगभग 1.5 साल में 60 से 65 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? टीआर मिश्रा का कहना है,
नोटबंदी की मार से अभी इंडस्ट्री संभली नहीं थी कि जीएसटी की मार पड़ गई। मुझे 40 से 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी थी। अगर यही सिलसिला इसी तरीके से चलता गया तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शायद तब जाकर सरकार को इस बात की समझ आए।
2-3 साल बाद भारत आर्थिक रूप से दिवालियापन से आ जाएगा।
चंडीगढ़ के रहने वाले आर्थिक मामलों के जानकार जितेंद्र बेदी का कहना है,
डीमोनेटाइजेशन तो बहुत गलत डिसीजन सी, उस तो अलावा जेड़ा जीएसटी है वो हालांकि बहुत अच्छा।
नोटबंदी बहुत गलत फैसला था। जीएसटी हालांकि अच्छा उपाय था पर जिस तरह इसे लागू किया गया वो ठीक नहीं था। पहले लघु उद्योगों को राहत दी जाती थी पर जीएसटी के बाद स्मॉल स्केल उद्योग प्रतियोगिता करने की हालत में नहीं रहे।
सूत्रों ने बताया कि साल 2018 से लेकर अब तक 250 से ज्यादा कंपनियां लुधियाना में बंद हो चुकी हैं। लुधियाना जिले के 7 सर्कलों से एकत्र किए गए आंकड़ों में ये सामने आया है। एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि ये केवल ऐसी कंपनियां हैं जिनके मालिकों ने उन्हें अपने कारखाने बंद होने की सूचना दी है, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि कंपनियां और कारखानों के बंद होने की संख्या काफी अधिक है। सुनीता रानी जैसे बहुत सारे लोग लुधियाना जैसे बड़े शहरों में नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन जैसा कि वो कहती हैं कि अगर फैक्ट्रियां ऐसे ही बंद होती रही तो नौकरियां कहां से मिलेंगी। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी लुधियाना।
भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका रही है, लेकिन पंजाब में एक किसान परिवार ऐसा भी है जिसने 4 पीढ़ियों में 5 आत्महत्याएं देखी हैं। कर्जे के बोझ में दबकर खुदकुशी कर रहे किसानों की खबरें पंजाब के भीतर त्रासदी का भयानक चेहरा दिखाती हैं। बरनाला से हमारे सहयोगी सुखचरण प्रीत की रिपोर्ट।
सुचार कौर की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने अपने परिवार की 4 पीढ़ियों के 5 लोगों को खुदकुशी करते देखा है।
साडा चाचा ही सी जोगिंदर सिंह दा जेड़ा परदादा सी इना दा, उदो बाद ओदे 2 बेटे मुरे खुदकुशी करके नारा ते कनो भगवान सिंह सी।
एक हमारे चाचा थे जोगिंदर सिंह, उनके 2 बेटों ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद 2 और बेटे खत्म हो गए। एक का नाम कुलवंत सिंह था जो लवप्रीत के पिता थे, और दूसरे जगतार सिंह। अब हमारे पोते की मौत हो गई।
पोता हो गया, बस उनका खत्म है, कुड़ी तेरी मां।
हाल ही में उनके 22 साल के पोते लवप्रीत ने कीटनाशक निगल लिया था और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले साल 6 जनवरी को लवप्रीत के पिता ने भी फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। इससे पहले साल 2000 में लवप्रीत के दादा ने भी खुदकुशी कर ली थी। सभी की वजह था कर्ज, और यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से चल रहा है। आज से 65 साल पहले लवप्रीत के परदादा ने भी कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी। सुचार कौर बताती हैं कि एक समय परिवार के पास 16-17 एकड़ जमीन थी जो धीरे धीरे घटती गई और परिवार की जरूरतों के कारण कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया।
बस बच्चा आजकल की करना कुछ कहो दे नहीं।
आजकल के बच्चों का क्या कहना, कुछ करते हैं नहीं। पहले कर्ज कम था, फिर गरीबी बढ़ती गई और कर्ज बढ़ता चला गया। एक वक्त परिवार के पास 16-17 एकड़ जमीन थी।
परिजनों का कहना है कि लवप्रीत पर कुछ तो बैंक का कर्ज था और बाकी उसने जमीन गिरवी रखी हुई थी। लवप्रीत की माता हरपाल कौर कहती हैं कि परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण कर्ज लगातार बढ़ता चला गया और इसी के कारण उसके पति फिर ससुर और अब बेटे की जान चली गई। वह बताती हैं कि ना तो सरकार ने कर्ज माफ किया और ना ही खुदकुशी करने वालों के नाम पर मुआवजा मिला। सिर्फ 750 रुपए की बुढ़ापा पेंशन के सहारे ही जीवन चल रहा है।
बहुत बड़ी कोई सहूलत नहीं,
कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से। कहते हैं कि सरकार गरीबों की मदद करती है, कहाँ करती है, सरकार मजबूत लोगों की ही मदद करती है।
गांव के ही रहने वाले गुरनाम सिंह कहते हैं कि लवप्रीत का परिवार मेहनती परिवार रहा है, मगर पारिवारिक जरूरतों के चलते वह कर्ज के जाल में ऐसा फंसा के फिर निकल नहीं पाया। गांव के रहने वाले किसान नेता गुरचरण सिंह ने बताया कि लवप्रीत के पिता ने भी 2 साल पहले 14 एकड़ जमीन पट्टे पर ली थी, मगर फसल खराब हो गई और कर्ज और बढ़ता चला गया। अब लवप्रीत के सामने भी वही हालात पैदा हो गए थे।
कौन खुदकुशी करना चाहता है जब कोई रास्ता ना दिखे, चारों तरफ अंधेरा हो, तभी करता है। बड़ी बहन है, उसकी शादी करनी थी, नौजवान ने मजबूर होकर जिंदगी खत्म कर दी। सारा गांव शोक में है, सरकार से अपील है कि इनका सारा कर्जा माफ किया जाए।
पुलिस इसे परिवार के बयान के आधार पर कर्ज, गरीबी और पारिवारिक हालात से तंग आकर खुदकुशी का मामला मान रही है।
परिवार वाले कहते हैं कि आत्महत्या का कारण ये था कि वो कर्ज में डूबा हुआ था। पहले पिता की भी किसी कारण मौत हो गई थी। ये कर्ज को लेकर टेंशन में रहता था, लड़ाई झगड़ा भी करता था।
स्थानीय नेता एक दूसरे पर तो कभी सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं, मगर किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि कैसे एक ही परिवार के लोग लगातार खुदकुशी करते चले गए। उधर अपने परिवार के 5 सदस्यों को असमय खो देने वाली सुचार कौर सहमी हुई हैं। उनकी चिंता है कि परिवार के हालात सुधरने की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।
सुखचरणप्रीत की रिपोर्ट। हरित क्रांति का जगमग चेहरा बना पंजाब कब और कैसे किसानों की कब्रगाह बनने लगा, यह समझने के लिए मैंने कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा से बात की।
3 यूनिवर्सिटियां हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तीनों ने एक सर्वे किया, हाउस टू हाउस होल्ड सर्वे, जिसने पाया कि 16 साल में 2000 से लेकर 2016-17 के बीच में 16,600 किसानों ने आत्महत्या की।
ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए?
इसमें दो बातें समझने की हैं कि नॉर्मली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई दो चीजें हो तो किसान की खुशहाली होती है, एक तो इरिगेशन हो और दूसरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। अभी भी आप देखेंगे नीति आयोग हो, कृषि मंत्रालय हो, वो सब यही कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और आय बढ़ेगी उससे। लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब में 98% अश्योर्ड इरिगेशन है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें जिसके अंदर इतने इसके आसपास कहीं पर इतनी अश्योर्ड इरिगेशन हो, यानी हर खेत को पानी लगता है। और प्रोडक्टिविटी जो है गेहूं, धान और मक्का की, यानी सीरियल क्रॉप्स की, दुनिया में टॉप करती है। और फिर भी पंजाब जो है इट हैज बिकम ए हॉट बेड ऑफ फार्मर सुसाइड। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी मेकर्स देखते हैं, जो वो देख रहे हैं उसको ये कि प्रॉब्लम कहीं और है, सोल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं ये लोग। जो ध्यान देने की जरूरत थी वो ये थी कि किसान की आय भी बढ़े, लेकिन इनकम को हमने पिछले 4 दशकों से दबाया हुआ है। किसान को जो उसका हक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, और रिजल्ट इसका ये है कि हर साल किसान का जो कर्जा है वो बढ़ता जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट देखी है, वो कहती है कि 2011-12 से लेके 2016-17 यानी 5 साल के पीरियड में औसतन जो किसान की इनकम, रियल इनकम बढ़ी है वो 0.44%, यानी आधा परसेंट से भी कम बढ़ी है हर साल। अभी कॉरपोरेट्स को क्या हुआ है इतना कि आफत आ गई है, सारा देश जो है कॉरपोरेट को हेल्प करने की बात कर रहा है, कारें नहीं बिकी, ट्रैक्टर नहीं बिके, और तो इतना हंगामा हो रहा देश में कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। ये कारण है कि हम दोगली नीति से चलते हैं, हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ही सेक्शन है कंट्री की इकोनॉमी जो चलाता है, बाकी सेक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये लगता है हमें। देखिए अभी आप पंजाब को जो कंपेयर करने का मेरा एग्जांपल देने का मतलब मेरा ये था कि आपको ये पता चले कि जिसको हम मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट कहते हैं उसका ये हाल है। इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है आधे देश में किसान परिवार की औसतन आय 20,000 रुपए साल की है, यानी 1,700 रुपए से कम में हर महीने वो गुजारा करता है एक परिवार। क्या हम सोच भी सकते हैं कैसे गुजारा करता होगा 1,700 रुपए में? आज अगर आपने गाय पालनी हो तो 1,700 रुपए में आप नहीं पाल सकते, तो किसान अपना परिवार कैसे पालता होगा आधे देश में? कभी सोचा है कभी हमने?
क्या तो सरकार, क्या सरकार और नीति निर्माता जो हैं उनकी नजर में ये बात आती नहीं है, या वो देख कर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं?
सरकार और नीति निर्माताओं को हम क्यों दोष दें? आम आदमी को नजर नहीं आता है। आम आदमी अपनी जिंदगी में खुश है, उसको किसान से कोई मतलब ही नहीं है। आज देश में इतना कटाव हो गया है देश के उसमें किसानों से, ग्रामीण और शहरी इलाकों में, कि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर देश के आम आदमी को चर्चा हो, जैसे आलू के भाव बढ़ते हैं, टमाटर के भाव बढ़ते हैं, तो आम आदमी खड़ा हो जाता है कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं खड़ा होता?
पंजाब में किसानों की हालत पर ये थे कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा। ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम में आगे चर्चा भारत प्रशासित कश्मीर में राजनीतिक निर्वात की, भारतीय क्रिकेट टीम की भी खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं अभी तक के मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौड़ के साथ।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने अपने यहां जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फिर से कौंसुलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। कुलभूषण को पाकिस्तान ने इसी महीने की 2 तारीख को पहली बार कौंसुलर एक्सेस दिया था। जम्मू के कठुआ में पुलिस ने 3 संदिग्ध चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इन तीनों का संबंध चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। कठुआ के SSP श्रीधर पाटिल ने बताया है कि इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक आधिकारिक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले महीने की 5 तारीख से लेकर अब तक 4,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 2,600 लोगों को रिहा किया जा चुका है, मगर सरकार की ओर से गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या नहीं बताई गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक ट्रेन हादसे में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। तंगानजिका प्रांत में सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मरने वाले लोग चुपके से इस पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कई लोग अभी भी डब्बों में फंसे हुए हैं। रूस में पुलिस ने विपक्षी नेता अलेक्सेई नवालिनी के समर्थकों के घरों और दफ्तरों पर सुबह सुबह छापेमारी की। नवालिनी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहने के बदले में ये कार्रवाई की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने संसद को 5 हफ्तों के लिए निलंबित करने के संबंध में महारानी को झूठे कारण नहीं बताए थे। बुधवार को स्कॉटलैंड की एक अदालत ने बोरिस जॉनसन के फैसले को अवैध करार दिया था। फेसबुक ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी की इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा 24 घंटों के लिए रोक दी है। फेसबुक ने यह कदम नेतन्याहू के आधिकारिक पेज पर पोस्ट किए गए एक संदेश को लेकर उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरब इसराइलियों को खत्म करना चाहते हैं। फेसबुक ने इस संदेश को अपनी हेट स्पीच यानी भड़काऊ सामग्री पर नीति का उल्लंघन बताते हुए यह कदम उठाया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान ने ट्रेड यूनियन से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने या इसमें शामिल रहने के आरोप में 7 लोगों को जेल की लंबी सजा सुनाई है। इनमें से 3 मजदूर अधिकार कार्यकर्ता हैं और 4 पत्रकार। इन्हें 18 साल की सजा सुनाई गई है। ये मामला पिछले साल एक गन्ना फैक्ट्री में 1 महीने तक चली हड़ताल को लेकर सुनाया गया है। जिम्बाब्वे में इस बात को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को कहां दफनाया जाए। मुगाबे के परिजन उन्हें उनके गांव में दफनाना चाहते हैं, जबकि सरकार राजधानी हरारे में। बीबीसी समाचार।
किसी भी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की, चुने हुए नेताओं की अहम भूमिका होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर भारत प्रशासित कश्मीर में, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है जहां ज़्यादातर नेताओं की नज़रबंदी अभी भी जारी है। भारत सरकार ने इन नेताओं को एहतियातन तब नज़रबंद किया था जब पिछले महीने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था। नेताओं की इस नज़रबंदी ने 1 महीने के भीतर कश्मीर घाटी में एक तरह का राजनीतिक निर्वात पैदा कर दिया है। श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर आज जब दिल्ली स्टूडियो आए तो रेडियो संपादक राजेश जोशी ने उनसे इस बारे में और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात की।
जी देखें, आपने सही शब्द यूज़ किया, राजनीतिक वैक्यूम। वाकई वहाँ इन्फॉर्मेशन वैक्यूम तो है ही ब्लॉकेट की वजह से, लेकिन ये राजनेताओं, खास तौर से ऐसे जो है नेताओं को बंद कर देना जो 70 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तिरंगा हाथ में लिए थे या भारत का पक्ष करने वाले, उन्हें राजनीतिक कहते हैं, प्रो इंडिया मेन स्ट्रीम कहा जाता है उन्हें। तो जब उनके नेताओं को बंद किया गया तो इससे 2 बातें हो गई। एक तो उनकी पार्टीज ग्रॉस रूट लेवल पे डिमोरलाइज हो गई, उनकी क्षमता खत्म हो गई और उन्हें बंद इसलिए किया गया क्योंकि प्रशासन का कहना था कि वो मोबिलाइज कर सकते हैं अपोजिशन, जो भी फैसला लिया गया अनुच्छेद 370 के हवाले से, तो इसलिए उन्हें बंद किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न जो उभर के सामने आता है कि जब कभी भी प्रशासन को लगे कि उन्हें इलेक्शन करवाने हैं, वहाँ चुनाव करवाने हैं, तो ये नेता लोगों के सामने क्या मुद्दा लेकर आएंगे?
ये बिल्कुल यही सवाल है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखा जाए, दोनों पार्टियों ने किसी न किसी मकाम पर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, सरकार में शामिल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल थी और अभी पीडीपी और बीजेपी की सरकार तो वहाँ थी। मेरा सवाल यह है कि जब लोगों के पास पॉलिटिकल लीडरशिप कोई नहीं रहेगी तो उनका झुकाव किस तरफ होगा?
जी देखिए, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति जो है वो पैदा हो गई है क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का तनाव पैदा होता था तो एक काउंटर नैरेटिव प्रशासन के पास रहता था, वो इन्हीं मेन स्ट्रीम लीडर्स या इनकी पार्टी या इनके स्लोगन्स को लेकर रहता था। जैसे वहाँ पे चरमपंथ 30 साल से है या वहाँ पे अलगाववाद 30 वर्ष से है, तो उसके विरुद्ध एक काउंटर नैरेटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से आता था वो ये आता था कि देखिए जी, ये लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं, ये भारत का समर्थन करने वाले हैं, और वो लोगों को ये कहते थे कि उनका रीज़न, उनका जो विकल्प है कश्मीरी होने के नाते, वो सिर्फ ये है कि चरमपंथ से दूर भाग के वो संविधान में जो मौजूद गारंटीज़ हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो अब जब वो बीच का मिडल ग्राउंड ही ख़त्म हो गया तो उसके बाद दूसरी बात यह है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कई वर्षों से इन पार्टीज़ और इन लीडर्स की क्रेडिबिलिटी जो ग्राउंड पे है वो पहले से ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ बारी बारी तो रूल किया। उमर अब्दुल्ला तो जूनियर फॉरेन मिनिस्टर थे वाजपेयी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट में, तो इस बार तो महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा उनके साथ कोलिशन किया। उसको लेकर लोगों में जब भी ये अपोजिशन करेंगे या कहेंगे कि बीजेपी ने गलत किया है, उसके टेकर्स ग्राउंड पे नहीं होंगे।
अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वहाँ ग्राउंड पे नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपेंड करेगी ना।
कश्मीर घाटी की ही बात जब मैं करूँ, 5 अगस्त को जब ये घोषणा हुई, बहुत मतलब ज़मीन हिला देने वाली घोषणा थी, तो इससे पहले हमने कई बार ऐसी कहानियां बीबीसी में भी की हैं कि बीजेपी अपनी मेंबरशिप जो है कश्मीर के 10 जिलों में बढ़ा रही है और उनके प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ऑन रिकॉर्ड हैं बीबीसी के साथ ही, उन्होंने कहा था इस स्थिति से पहले कि 4,40,000 उनकी जो मेंबरशिप है वो है। लेकिन अब देखना यह है कि स्थिति कैसी है। स्थिति ऐसी है कि जब आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने इसका समर्थन किया है, इसको वेलकम किया है, तो 4,40,000 वर्कर कहाँ है? उनमें से तो 10,000 भी एक जगह जमा होकर धारा 370 को हटाए जाने का वेलकम नहीं कर पाए।
जब ये स्थिति आ गई तो अब वो जो संगठन है, जो हथियारबंद तंजीमें हैं, इस वैक्यूम में उनके लिए बहुत एक फायदेमंद स्थिति रहेगी।
जी देखें, जहां तक आइडियोलॉजिकल स्टांस है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, चरमपंथियों का, वो चूंकि उनमें से ज़्यादातर रेडिकलाइज्ड हैं, वो फंडामेंटलिस्ट व्यू पॉइंट उनका रहता है और वो कहते हैं कि ये जो 370 या 35A के मामले हैं ये मेन स्ट्रीम मामले हैं क्योंकि ये इंडिया के संविधान में मामले थे और इन मामलों पर ज़्यादातर आक्रोश अगर पाया भी जाए तो वो उनके हिसाब से मेन स्ट्रीम लीडर्स में।
अच्छा, तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं
उनके
है,
लिए कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों से मैंने बात भी की, उन्होंने कहा कि अगर 30 वर्ष में उनके मुताबिक 1,00,000 लोग मारे गए तो ये सारी कुर्बानियां या बलिदान जो है ये 370 के लिए नहीं दिया गया था।
हाँ, लेकिन एक और तबका है जो न तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं न चरमपंथी हैं, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे है?
जी देखिए, हुर्रियत की क्रेडिबिलिटी का मसला कभी रहा नहीं इस लिहाज से कि वहाँ हुर्रियत की पॉपुलैरिटी या उसकी लोकप्रियता का जो स्केल है वो हड़ताल से आंका जाता है। हुर्रियत ने जब भी कॉल दी तो हड़ताल होती है। न तो हुर्रियत ने कभी इलेक्शन लड़ा, न तो उन्होंने कभी ग्रास रूट लेवल पे ये दिखाया कि उनकी पब्लिक स्ट्रेंथ क्या है। जहाँ तक चुनाव में पार्टिसिपेट करने का ताल्लुक है या पब्लिक स्ट्रेंथ दिखाने का ताल्लुक है, वो तो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी करते थे या कांग्रेस करते थे या बीजेपी, मतलब जम्मू कश्मीर में जम्मू के लेवल पे करते थे। लेकिन अलगाववादियों की स्ट्रेंथ का स्केल जो है वो आज तक हड़ताल से आंका गया है। अब दिलचस्पी की बात यह है कि ये जो 40-41 दिन से बंद है वहाँ पे, इसका आह्वान किसी ने नहीं किया है, इसकी कॉल किसी ने नहीं दी है, ये खुद ब खुद लोग कारोबार बंद किए हुए हैं, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं।
अगर लोग खुद ब खुद ये हड़ताल कर रहे हैं, उनका इसका कोई नेतृत्व नहीं है, नुकसान तो आखिरकार उन्हीं का है
जी। ये नुकसान पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो 30 वर्ष से हो रहा है, क्योंकि अलगाववादियों की तरफ से ये डिस्कोर्स चला है और इसकी काफ़ी क्रेडिबिलिटी भी है और काफ़ी लोगों को ये यकीन भी हो गया है कि अगर वो हड़ताल करेंगे तो ये एक नॉन वायलेंट एक्सप्रेशन होगा। ये बंद इसलिए भी है, लोगों ने खुद से किया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली गवर्नमेंट है, ख़ासतौर से जो गृह मंत्रालय है अमित शाह के नेतृत्व में, तो वो वहीं पर नहीं रुकेगा, क्योंकि अगला स्टेप जो है उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाई हुई है पूरी आबादी। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कागज़ में या संविधान में हेर फेर का मामला नहीं है, मामला ग्राउंड या मटेरियल चेंजेस का है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे उनकी आइडेंटिटी, उनका जो व्यक्तित्व है, वो खतरे में पड़े।
कश्मीरियत
जी।
रियाज मसरूर से बात कर रहे थे राजेश जोशी। इधर दिल्ली में आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से जब कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात के बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा,
द डिसीजन ऑन द कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इन प्लेस एंड आल्सो ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार कह रहे थे कि संचार के साधनों पर पाबंदी और लोगों को एहतियातन हिरासत में लेने का फैसला उस समय के हालात के हिसाब से स्थानीय स्तर पर होता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पेंगोंग झील के किनारे पहाड़ियों की ढलान पर दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों के बीच बुधवार को धक्का मुक्की हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं जब इस इलाके में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से टकराए हों। ऐसी ही एक घटना 15 अगस्त 2017 को हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इन झड़पों के कारण जानने के लिए हमने बात की भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से और सबसे पहले यही पूछा कि इन झड़पों की पृष्ठभूमि में क्या है। जनरल शंकर प्रसाद से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी पवन सिंह अतुल।
देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर इतने सालों से करेक्टली डीमार्केट नहीं हो पा रहा है, इसके दो तीन कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि उनके नक्शे और हमारे नक्शे एक स्केल के नहीं होते। इसके ऊपर कुछ समझौता हुआ भी है, जो चाइना का बॉर्डर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि हमारी टेरिटरी यहाँ तक है, लेकिन भारत सरकार और भारत के जो बॉर्डर मैनेजमेंट वाले वो कहते हैं यहाँ नहीं, हमारी इससे आगे यहाँ तक है। तो उसमें क्या कहते हैं अंग्रेजी में, परसेप्शन फर्क है। तो वो दोनों साइडें उसको कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करती है अपना उस पर रुतबा जमाने के लिए। कई दफा तो दोनों पेट्रोलों की आमने सामने बातचीत नहीं होती क्योंकि वो अलग अलग टाइम में निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पेट्रोल एक ही टाइम में एक ही जगह पेट्रोलिंग करते हैं, फिर उनकी मुठभेड़ हो जाती है। जब मुठभेड़ हो जाती है तो आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है, बात बढ़ती जाती है, प्रेस में आ जाती है, हायर हेडक्वार्टर में जाती है, तो उसके बाद फ्लैग मीटिंग होती है, उसका प्रोसीजर लेट डाउन है, और जब फ्लैग मीटिंग होती है तो समझौता हो जाता है, दोनों तरफ अलग अलग हो जाता है।
तो जनरल साहब, आपके मुताबिक इस समस्या का हल क्या है और इसे सुलझाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए?
जब तक कि बॉर्डर डिमार्केशन इंडिया और चाइना का नहीं हो पाएगा तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि दोनों के परसेप्शन अलग अलग है। अब बात यह है कि इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें चाइना अपने आप को दिन पे दिन स्ट्रांग बनाता जा रहा है बॉर्डर एरिया में, उसने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है बॉर्डर एरियाज में, उससे कम से कम 25 साल पीछे है। जिस दिन चाइना ये समझेगा कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और वो जबरदस्ती इस एरिया को हत्या सकता है, तो वो शायद करने की कोशिश करेगा। लेकिन पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का भी जो रवैया रहा है, डिप्लोमेटिक एंगल रहा है, मिलिट्री एंगल रहा है, लीडरशिप एंगल रहा है, उससे ये लगता है कि अब चाइना से हम भी बराबरी की बात कर सकते हैं। और इसमें खतरा यह है कि कभी गोली ना चल जाए। अगर एक दफा गोली चल गई, जैसे ढोकलम में गोली नहीं चल पाई थी, इसी मारे कहीं गोली चल जाए लोअर लेवल पे, तो बात बिगड़ सकती है, हाथापाई तक हो जाती है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि गोली न चले। ये कैप्टन के हाथ में ये पावर है समय कि वो लड़ाई में कन्वर्ट कर सके या कर दे या ना करे।
ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना की जो नवगठित 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है वो अरुणाचल में वायुसेना के साथ एक सैन्य अभ्यास करने जा रही है, और हाल ही में 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के गठन की भी खबरें आई हैं। चीन के रवैये पर इन खबरों का कोई असर तो नहीं हो रहा है?
नहीं, इसको प्रोवोकेशन नहीं है, इसको देखिए अपनी तैयारी समझिए। जब चाइना अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, चाइना ने आपने देखा होगा पूरी रीऑर्गेनाइजेशन की है अपनी आर्म फोर्सेस को, आर्मी नेवी एयरफोर्स को, उसने आर्मी की टैक्टिक्स बदली है। पिछले 5-6 साल में उसकी टैक्टिक्स में बहुत तब्दीली आ गई है। अब वो छोटे ग्रुप से अटैक एक्शन करता है, वो ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स पे रिलाई करता है और आर्टिलरी पे रिलाई करता है। उसी तरीके से हम लोग भी अपनी टैक्टिक्स दिन पे दिन बदल रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है। हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट निकाला बैटल ग्रुप्स। आपने आज ही के अखबार में पढ़ा होगा कि बैटल ग्रुप्स की एक एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के आसपास कहीं होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा माउंटेन डिवीजन है, माउंटेन स्ट्राइक कोर है, उसके तहत ये सब अच्छी कार्रवाई हो रही है। जितनी तैयारी बैटल फील्ड की चाइना करता है, हमें उससे पीछे नहीं रहना, हमें भी तो करनी है तैयारी।
जहाँ पर ये झड़प हुई है वो इलाका कैसा है, उसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, ये माउंटेनस इलाका है, हर एक पहाड़ में कुछ ना कुछ एक फिंगर जैसे निकलती है ना, जैसे इसको स्पर कहते हैं इंग्लिश में। ये एक माउंटेन पोजिशन है, उसमें से 5-6 स्पर निकल रही है। ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके को जब नीचे स्लोप होता है तो उसके स्लोप पे जो ढलवान निकलता है वो बीच में थोड़ी सी वैली आ जाती है, तो उसको हम स्पर कहते हैं, उसको आप किसी तरह से फिंगर भी कह सकते हैं।
भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता पवन सिंह अतुल। अब थोड़ी सी चर्चा सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आज दिन भर क्या हलचल रही, जानने के लिए मैंने बात की सूर्यांशी पांडे से।
आज सोशल मीडिया पर ग्रेविटी नजर आ रही है।
ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, क्या वजह है? क्या कोई विज्ञान की नई खोज सामने आई है?
नहीं संदीप, बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान सामने आया है। बयान की एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, जिसमें अर्थव्यवस्था और जीएसटी पर बात करते हुए पीयूष गोयल कहते हैं, इस मैथ्स में मत पढ़िए, इस मैथ्स ने कभी आइंस्टीन की मदद नहीं की, डिस्कवर ग्रेविटी। बस ये पॉज गलत जगह ले लिया उन्होंने। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग विज्ञान, गणित, आइंस्टीन, न्यूटन करते हुए पीयूष गोयल का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर पहले पीयूष गोयल ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये काफी गलत बात है।
सूर्यांशी, पीयूष गोयल के बयान और बयान पे जो विवाद हुआ, उसके अलावा और क्या कुछ हलचल है सोशल मीडिया में आज?
आज ट्विटर पर दिन में सारागढ़ी भी टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। इसकी वजह है कि आज ही से ठीक 122 साल पहले सारागढ़ी में 1897 को हजारों पठानों से 21 सिखों की लड़ाई हुई थी
और इसी पर एक फिल्म बनी है केसरी।
बिल्कुल, और फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म की बात थी, लेकिन अगर आपको इस लड़ाई की असली कहानी पढ़नी हो तो आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज पर आ सकते हैं।
और सूर्यांशी, आज फिरोज गांधी की भी कुछ चर्चा हो रही थी।
इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी की जयंती भी है। गांधी परिवार का जब भी जिक्र छिड़ता है तो फिरोज गांधी का नाम कम ही सुनाई पड़ता है। अगर आपको इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की 1942 में हुई शादी की तस्वीर देखनी हो तो आप बीबीसी हिंदी के इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं और साथ ही पढ़ सकते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी की जिंदगी में फिरोज गांधी की एंट्री हुई थी और कैसे वो शादी के बाद अलग रहने लगे थे। तो वहीं खेल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, तो सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा रही।
सोशल मीडिया गागर में सागर भरा सूर्यांशी पांडे ने। सोमवार के बाद हर बृहस्पतिवार रहता है आपको अपनी चिट्ठियों का इंतजार। आइए सुनते हैं आज हमारे श्रोताओं के खत क्या कह रहे हैं।
आपकी राय आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूं राजेश प्रियदर्शी
और मैं हूं सुशीला सिंह। और राजेश जी, पहला पोस्टकार्ड मेरे हाथ में है कानपुर उत्तर प्रदेश से अक्षय का। ये लिखते हैं कि आपकी संस्था जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात पर अपनी रिपोर्टिंग कर रही है, सर्वथा बचकानी, शरारतपूर्ण तथा घोर निंदनीय है। आप लोग उपद्रवियों, आतंकियों का समर्थन भी हालात बिगाड़ने के लिए पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, तो काफ़ी नाराज़ हैं ये हमसे अक्षय।
अक्षय का जवाब देने की ज़रूरत आज शायद मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि एक चिट्ठी है मेरे सामने कुमेश्वर कुमार की। ये लिखते हैं ग्राम पोस्ट देमार धमतरी छत्तीसगढ़ से। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लंबी चिट्ठी लिखी है, लेकिन असली बात जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो 15वीं कोर के पूर्व कमांडर इंडिया बोल में कार्यक्रम में आए थे उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी लिखी है और ये कहते हैं कि ताज्जुब है कि वे इतने निष्ठुर, निर्मम और क्रूर कैसे हो गए। कश्मीर में पिंजरे में कैद, संचार माध्यमों से महरूम वहाँ के वाशिंदे, मेरे अपने देश के भाई बहन, उनके बच्चे आज किस हाल में हैं? स्वनाम धन्य मीडिया समूहों की चुप्पी साधने के कारण कोई नहीं जानता कि पिंजरे के अंदर जीते मरते लोगों में कितनी पीड़ा है। तो एक चिट्ठी ये भी है और एक चिट्ठी जो कानपुर से आई वो भी है। तो हमारे अपने कार्यक्रम के बारे में जो लोग जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, ये यही इसकी खूबसूरती है कि यही उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपना काम निष्पक्ष तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जो बातें आप तक नहीं पहुंच रही हैं उनको भी पहुंचाने की कोशिश हम करते रहते हैं।
जी, अगली चिट्ठी रियाद से आई है और इन्होंने, ये शबीर खन्ना है, ये लिखते हैं कि मेरा ये पत्र जब बीबीसी के पास पहुंचेगा तब तक बहुत पुराना हो जाएगा, लेकिन ना चाहकर भी पत्र लिखना ही सही होगा। इनका कहना है कि एक मयान में दो तलवार, एक मस्जिद में दो इमाम या एक मंदिर में दो पुजारी रह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। तो फिर बीबीसी के इंडिया बोल दिनांक 17/8/2019 और 24/8/2019 को सुनने को मिला। श्री वात्सल्य राय ने 17 तारीख को प्रोग्राम प्रस्तुत किया था और 24 तारीख को श्री संदीप सोनी ने किया था। उनके बीच में ये लिखते हैं कि राजेश जोशी का दोनों बार अचानक प्रोग्राम पर अनाधिकृत कब्जा किया गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें कोई शक नहीं है कि श्री राजेश जोशी ने दोनों ही दिन गहराई से जाकर प्रोग्राम को अच्छा बनाया, लेकिन बेहतर होता कि श्री राजेश जोशी एक ही अनाउंसर रहते।
आपका शुक्रिया पत्र लिखने के लिए। ये आलोचना आपकी हम राजेश जोशी तक पहुंचा देंगे। आपने खुद ही लिखा है कि उन्होंने बहुत गहराई से कार्यक्रम तैयार किया और आपको ऐसा लगा कि दो लोगों को कार्यक्रम का संचालन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि राजेश जोशी उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे मेहमान के साथ, संचालन वात्सल्य राय और संदीप सोनी ही कर रहे थे, लेकिन चूंकि विषय बड़ा है, संवेदनशील है और एक घंटे का खास कार्यक्रम है, तो इसलिए हमें लगा कि उसमें उनका होना बेहतर होगा।
और राजेश जी, हम दो जो चिट्ठियां ले रहे हैं उसमें बात हो रही है दुनिया जहां की और विवेचना की, और जाहिर सी बात है तारीफ ही हो रही है इन दोनों चिट्ठियों में। पहला खत है गणेश प्रसाद हुजदर का, ये लिखते हैं कि संदीप सोनी द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहां में गुरिल्ला लीडर से जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने रॉबर्ट मुगाबे के राजनीतिक सफ़र के बारे में विस्तार से सुना। कुछ लोगों की नज़र में वो हीरो थे तो कुछ लोगों की नज़र में विलन। इसी तरह रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत विवेचना में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोगों के प्रति हो रहे भेदभाव और अत्याचार के बारे में सुनकर दुख हुआ। साथ ही सादिक आजमी ग्राम सभा कौडिया आजमगढ़ से लिखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी रूपी मुकुट में छिपे चेहरे पर तानाशाही का नजर आता धब्बा और लगभग 4 दशक तक जिम्बाब्वे पर शासक के रूप में खुद को स्थापित करने वाले रॉबर्ट मुगाबे पर समीक्षा सुनकर आभास हुआ कि वाकई में संदीप सोनी जी ने दुनिया जहां में इस बार काफी मेहनत से रिपोर्ट को तैयार किया जो वाकई बहुत अच्छा था।
रॉबर्ट मुगाबे पर जो और विस्तृत प्रस्तुति थी वो आपको पसंद आई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में हमें लगा कि आपको विस्तार से बताया जाना चाहिए।
जी, अगला ईमेल है डिब्रूगढ़ असम से उमेश का, ये लिखते हैं कि नमस्कार बीबीसी परिवार को, केंदुगुरी चाय बागान से उमेश कुमार का। दिलीप कुमार शर्मा की हृदय विदारक रिपोर्ट जो चाय बागान पर थी, सुनकर लगा कि कमोवेश सभी बागानों की यही कहानी है, लेकिन असम चाय कर्मचारी संघ की रिपोर्ट भी अगर जोड़ दी जाती तो बागान की कहानी पूरी हो जाती।
ये चाय बागान के जो मजदूरों की दुर्दशा है, हमने कोशिश की कि उनकी जो तकलीफ है उसकी कहानी आप तक पहुंचा सके, कि हम जो चाय पीकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं उसको उगाने वाले लोग किस हाल में हैं। तो आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी, इसके लिए आपका शुक्रिया।
जी, एक और ईमेल है शंभू शरण का, इन्होंने इंग्लिश में जो है ईमेल लिखा है, मैं इसका पढ़ के सुनाती हूँ सार जो लिखा है। ये लिखते हैं कि कवि पाश पर जो बातचीत की गई थी उसको काफ़ी रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया गया था, और ये उनके मित्र से बातचीत की गई थी, और इन ये बातचीत की थी राजेश जोशी ने उनके दोस्त अमरजीत चंदन से।
अमरजीत चंदन भी एक नामी गिरामी कवि हैं पंजाबी के, और उन्होंने अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से याद किया। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें बीच बीच में आपको सुनवा सकें और कला संस्कृति की दुनिया से जुड़े लोगों के जीवन के बारे में भी आपको बताते रहें। बहुत शुक्रिया आप सबका पत्र लिखने के लिए। हमें इसी तरह पत्र लिखते रहिए, आप हमारा पता जानते ही हैं। अगर आप डाक से हमें चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल को टीम से बाहर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और क्या है खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
पिछले दिनों वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराने के बाद टीम में बहुत ज्यादा परिवर्तन की आस शायद ही किसी को रही हो, और ऐसा ही हुआ भी। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह शुभमन गिल को टीम में जगह दी गई। केएल राहुल ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में दूसरी पारी में 149 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन उसके बाद अगले 7 टेस्ट मैच में उनके बल्ले से शतक तो क्या, अर्धशतक भी नहीं निकला। क्रिकेट समीक्षक अयास विमन को लगता है कि रोहित शर्मा के लिए केएल राहुल को टीम से बाहर किया गया।
मेरे हिसाब से टोटल फेलियर नहीं थे वेस्ट इंडीज में, लेकिन बहुत स्टार्ट्स मिलने के बावजूद कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन, अगर वो अपने करियर का ऐसा लग रहा है कि बेस्ट फॉर्म में है, उन्हें आप 15 की स्क्वाड में लेते हैं और नहीं खिला है तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका। अब मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बन रही है क्योंकि रहाणे ने अच्छे रन बनाए, हनुमा विहारी फॉर्म दिखाए है, तो एक ही जगह उनके लिए बन रही थी, वो है एज एन ओपनर, और केएल राहुल को उसका भुगतना पड़ेगा।
वैसे इन दिनों टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले सिर्फ मुकाबले नहीं रह गए हैं, वरन वो आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी हैं। शायद यही कारण है कि जिन्हें भी अब टेस्ट क्रिकेट खेलने का अवसर मिल रहा है वो अपनी जी जान लगा रहे हैं। हनुमा विहारी ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में तब नाबाद अर्धशतक बनाया जब भारत की स्थिति खराब हो सकती थी। भारत के कप्तान विराट कोहली भी ऐसे प्रदर्शन से खुश हैं और उन्होंने खुले दिल से इसे माना कि खिलाड़ी विपरीत परिस्थिति से जूझना सीख रहे हैं और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।
We are looking forward to the test series against South Africa as well because we've started well and the good thing is that we look forward to play test cricket and play in a similar fashion that we have here and really capitalize on the momentum that we have. I know it's not going to be easy. We're going to be put under pressure.
वेस्ट इंडीज दौरे पर रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा नहीं चले। 4 पारियों में उनके बल्ले से महज 60 रन निकले, तो क्या ऐसा होगा कि उन्हें नाकाम होने के बाद भी मौके मिलते रहेंगे? अयास विमन कहते हैं,
भरपूर यंग टैलेंट आ रहा है जैसे शुभमन गिल जिनको टेस्ट स्क्वाड में लिया गया है, पुजारा, रहाणे, इन सब के साथ ऐसा हुआ है कि दबाव बहुत उनके पर आया था। चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेले उन्होंने अपने क्रिटिक्स को खामोश कर दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4-5 साल का लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि हर प्लेयर के लिए जो भी हो, अगर विराट कोहली भी 3-4 सीरीज में रन नहीं बनाएंगे तो सवाल उनके ऊपर भी खड़े हो जाएंगे।
भारत ने पिछली बार अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका को 4 टेस्ट मैच की सीरीज में साल 2015-16 में 3-0 से हराया था। कागज और हकीकत में चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई ये टीम बेहद मजबूत है।
और इस रिपोर्ट के साथ ही आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, एशेज सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है।
जी हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे सीरीज़ का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज से केनिंगटन ओवल में शुरू हुआ है। थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने टॉस हारकर जो पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी उसने 3 विकेट खोकर 169 रन बना लिए। कप्तान जो रूट 57 और जॉनी बेरेस्टो 22 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि रोरी बर्न्स ने 47 रन बनाए। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम की, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है पूरी सीरीज़ में, 2-1 से सीरीज़ में आगे है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास ये मौका है कि अगर वो सीरीज़ बराबर करा ले तो शायद उसकी साख बने, लेकिन इसके बावजूद एशेज ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी।
बहुत शुक्रिया आदेश जी। और दिल्ली स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही देर में बजेंगे रात के 8:30, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। समापन से पहले मुख्य समाचार दोबारा सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने अपने यहां जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फिर से कौंसुलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। जम्मू के कठुआ में पुलिस ने 3 संदिग्ध चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इन तीनों का संबंध चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक आधिकारिक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले महीने की 5 तारीख से लेकर अब तक लगभग 4,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक ट्रेन हादसे में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। रूस में पुलिस ने विपक्षी नेता अलेक्सेई नवालिनी के समर्थकों पर छापेमारी की है। नवालिनी ने इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन का बदला ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने संसद को 5 हफ्तों के लिए निलंबित करने के संबंध में महारानी को झूठे कारण नहीं बताए थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का संपादन किया राजेश जोशी ने और तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।